ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। भारत ने मालदीव को 40 करोड़ डॉलर की सहायता और 3000 करोड़ रुपए की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय की सुविधा प्रदान की है। ये सहायता मालदीव को वर्तमान वित्तीय चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। ये निर्णय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइजू के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान लिया गया। दोनों देशों ने भ्रष्टाचार को रोकने और उससे निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग सहित दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच दो समझौतों का नवीनीकरण भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सहयोग को रणनीतिक दिशा देने के लिए व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी का दृष्टिकोण अपनाया है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने हमेशा मालदीव के लिए प्रथम संकट मोचक की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि मालदीव हमारी पड़ोसी प्रथम नीति और सागर विजन में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉ म्यूजी ने कहा कि वो इस द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते और आर्थिक सहायता प्रदान करने के भारत सरकार के फैसले के आभारी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइजू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। दोनों नेताओं ने बहुआयामी भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और संबंधों को प्रगाढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों और भविष्य के संकटों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए नए और तकनीकी नवाचार का आह्वान किया है। श्री सिंह ने कल नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट के चौथे संस्करण का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र को पूरी तरह से मदद देने को प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की आज होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी और दोपहर तक परिणाम आने की संभावना है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना के व्यापक प्रबंध किए हैं। आयोग ने रुझानों और परिणामों को बताने के लिए अपनी वेबसाइट www.eci.gov.in पर समुचित व्यवस्था की है। मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर में 873 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। समूचे केंद्र शासित प्रदेश में 28 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए 18 और 25 सितंबर तथा 1 अक्टूबर को 3 चरणों में मतदान कराया गया था। हरियाणा में 22 जिलों में आज होने वाली मतगणना के लिए 90 केंद्र बनाए गए हैं। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। मतगणना से 1031 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल अर्जेंटीना के विदेश मंत्री डायना एलेना मोंडिनो के साथ मुलाकात की। इस बैठक में अर्जेंटीना के उद्योग और व्यापार प्रमुख भी शामिल थे। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश साझेदारी बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने ऊर्जा, खनिज, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक शीर्ष 10 जहाज निर्माता देशों और 2047 तक शीर्ष 5 देशों की सूची में शामिल होना है। जर्मनी में हैम्बर्ग स्थिरता सम्मेलन में श्री जोशी ने भारत में हरित पोत परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत ने अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता में परिवर्तनकारी वृद्धि देखी है। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज से लद्दाख के थोई से 7000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली निकाली जाएगी। इस कार रैली का समापन 29 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंचने के साथ होगा। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक से इस रैली को रवाना किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।